તારીખ 6/6/1996 ના દિવસે માઉન્ટ આબુમાં થયેલ તત્વ ચર્ચા.
પ્રભુ પ્રભુ લય લાગી નહીં, પડ્યો ન સદગુરુ પાય, બીઠા નહીં નિર્દોષ તો કરીએ કોણ ઉપાય. તો 20 દોરા મેં છે એક દોરા હૈ. ઉપરોક્ત પંક્તિ કે ભાવાર્થ સમજાઈએ. ક્યાં હે જો અપના સદગુરુ હૈ ઉસકે પૈર મેં લય લગા કર પડા નહીં. સદગુરુ કે પાસ તો ગયા લેકિન ઇસકી લય લાગી નહીં. લય લગતી હૈ તો ધારા પ્રવાહ રૂપ ઉસી કે તરફ કે પરિણામ રહેતે હૈ. એસા કભી હમારા હુઆ નહીં. ઓર અપને દોષ કો અપક્ષપાત રૂપ સે દેખા નહીં. એ દોનો બાત જબ નહીં હુઈ તો અબ તેરને કા કોણ સા ઉપાય હૈ? ઓર તો કોઈ ઉપાય તેરને કા હૈ નહીં. વો બાત વો ભાવાર્થ હૈ ઉસ પંક્તિ કા. બહુ ભ્રમણ કી ચિંતના મેં સંવેગ નહીં આને કા કારણ કુટુંબ પ્રતિબંધ લગતા હૈ. તો ઉસકો દૂર કરને કે લિયે ક્યા કરના? યહ શિબિર મેં કામ કરી હી લેના હૈ. કુટુંબ પ્રતિબંધ યાને કુટુંબ મેં અપનાપન, કુટુંબ કા મોહ સે કુટુંબ કી મુખ્યતા રહેના, ये कुटुंब प्रतिबंध है कि जिसके आगे हम आत्मकल्याण को गौण कर देते हैं. लेकिन कुटुंब में जो भी जितने भी सदस्य है ये भी परिभ्रमण करते हुए कुछ काल के लिए संयोग को प्राप्त हुए हैं, जिसका वियोग निश्चित है, होने वाला ही है. પર વો ભી એક આત્મા હૈ. હમ જો વ્યવહારિક સમજ સમજતે હૈ, વાસ્તવ મેં વાસ્તવિક રૂપ સે એસા કોઈ સંબંધ હૈ નહીં. સભી આત્મા હી આત્મા હૈ. કોઈ બાપ બેટા નહીં, કોઈ પતિ પત્ની નહીં, કોઈ ભાઈ બહેન નહીં, કોઈ કોઈ ભી સંબંધ નહીં હૈ. વાસ્તવ મેં સબ આત્મા હી આત્મા હૈ. વ્યવહારિક તોર સે બોલા જાતા હૈ, જૈસે નાટક મેં ડાયલોગ બોલા જાતા હૈ. નાટક કા કોઈ સંબંધ હોતા હૈ ક્યા? નાટક મેં વો વેશ લેતે હુએ કોઈ સંબંધ હોતા હૈ ક્યા? હા, વો તો એક રોલ હૈ અદા કરને કા. કુછ કાલ કે લિયે સ્ટેજ પર હૈ વહાં તક.
યે લંબે કાલ
કે યે થોડા નાટક લંબે કાલ કા નાટક હૈ, ઓર કુછ નહીં હૈ. બાકી કોઈ કિસી કા નહીં હૈ. બોલા થા ને કે આજ ઘર કા મુખિયા હોતા હૈ, ઘર કી પૂરી ઉપાધિ સહન કરકે સારી જિંદગી પરિશ્રમ કરકે સચ્ચે જૂઠે કાર્ય કરકે કર્મ બાંધ કરકે કુત્તા બન ગયા દૂસરે ભાવમાં. પર ઉસકો મોહ રહે ગયા કે મેરે પરિવાર હૈ. રોજ જાને લગા, રોજ ઉસકો માર માર કે નિકાલને લગે. ક્યા કરેંગે? કે હટતા નહીં હૈ કુત્તા યહાં સે, મારેંગે તો હટેગા. ઓર કોઈ મનુષ્ય હોકર કે ભી જાયેગા ને और बोलेगा कि बेटे का को मैं तेरा बाप हूं, तो महाराज चलो यहां से वरना कुछ चखाना पड़ेगा आपको।
लोग हंसेंगे।
हैं?
ये कुत्ता इसका बाप है बोल तो लोग हंसेंगे।
लोग हंसेंगे। और कोई मनुष्य होकर के भी आएंगे ना तो बोले कि अधिकार जमाने को आता है, निकालो निकालो, कौन पहचानता है इसको, कोई स्वीकार नहीं करेगा। अब तो मूर्ख होकर के सब करता है और क्या है? अपने आत्मकल्याण को गौण करके कुटुंब को मुख्य नहीं करना है, या कुटुंब वाले राजी रहे इस तरह से आत्मकल्याण करना है, वो नाराज हो तो नहीं करना है, ये कुटुंब प्रतिबंध है। कुटुंब का व्यामोह रख करके आत्मकल्याण को गौण करके दुर्गति में चले जाओगे तो दुर्गति के दुख में से कोई कुटुंब वाले छोड़ाने को आएंगे नहीं। तो वाल्मीकि का दृष्टांत तो बहुत प्रसिद्ध है, वो लुटेरा था जिसने रामायण लिखी ने, वो लुटेरा था, किसी एक मुसाफर को लूट रहा था, तो उसने बोला कि तुमको लूटना हो तो लूटो। इसका परिणाम देखे बहुत निर्ध्वंस परिणाम थे, क्रूर परिणाम थे। अगर वो लुटेरा तो क्या होता है कि अगला नहीं माने तो मार डाले। उसने देखा कि परिणाम तो बहुत कठोर है इसका, देखो कोई बात नहीं तुम लूटना, लेकिन एक मेरा सवाल का जवाब दे कि तुम इतना पाप करते हो किसके लिए करते हो? मेरे परिवार के लिए। तो ठीक है, तू जो पाप करता है तू ही भोगेगा, तेरा परिवार भी भोगेगा। तो मेरा परिवार ही भोगेगा, क्यों नहीं भोगेगा, माल तो वो लोग भी खाता है। तो गलत बात है, तुम ऐसा करो इस पेड़ के साथ मुझे बांध दो, मैं यहां से भाग नहीं जाऊं, तुम मुझे बांधो पैर से, रस्सी से बांधो, और तुम घर जाके पूछ के आओ कि ये पाप का भागीदार आप लोग हैं तो भूमेंगे कि नहीं भूमेंगे। अगर वो हाँ बोले तो तुमको जो कुछ करना है मुझे मंजूर है, अगर वो ना बोले तो ये धंधा तुम छोड़ दो। परिवार वालों ने साफ बोल दिया कि हमको ये तुम्हारा पाप का फल हमको नहीं भोगना है, हमको दुखी होना ही कहाँ है। भविष्य में क्या अभी भी कोई परिवार वाले को दुखी करके देख लो ना क्या हालत होती आपकी। किसी को भी थोड़ा भी दुख देकर देकर बात करो, अरे दुख दे ऐसी बात भी करो ना, दुख लगे ऐसी बात भी करो, सुनने को तैयार नहीं। तो दुख भोगने का तो सवाल ही नहीं है किसी को, छोड़ दिया उसने तो बन गया वाल्मीकि ऋषि, बन गया जंगल में, और उसने फिर रामायण लिखी। मिथ्या एकांत और सम्यक एकांत तथा मिथ्या अनेकांत और सम्यक अनेकांत, ये सुबह के प्रवचन में आया था, समझाइए। मिथ्या एकांत मैंने कोई भी एक मुद्दे को उतना खींचना कि जिससे प्रयोजन तो सधे नहीं और दूसरा नया अवगुण पैदा हो जाए, इसको कहते हैं मिथ्या एकांत। एक बात को पकड़ लिया, जैसे हमारे सिद्धांत में आता है कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कोई संबंध नहीं होने से कोई कर्ता हर्ता नहीं है, उस सिद्धांत को देख करके दया के परिणाम चले जाए तो एकांत हो गया, निर्दय हो जाए तो वो एकांत हो गया, और आत्मा अपना भी कार्य करता है और दूसरे का करता है, वो मिथ्या अनेकांत है, अपने का करता है और दूसरे का कुछ नहीं करता है, अस्ति नास्ति से अनेकांत है, और अपने स्वरूप में सन्मुख होना, स्वरूप सन्मुख होना, स्वरूप सन्मुख होने में ही, अंतर्मुख होने में ही हमारा कल्याण है, वो सम्यक एकांत है। और स्वरूप में अंतर्मुख होना और बहिर्मुख नहीं होना, वो सम्यक अनेकांत है। जहाँ सम्यक एकांत होता है वहाँ सम्यक अनेकांत होता ही है, और जहाँ मिथ्या एकांत होता है वहाँ मिथ्या अनेकांत होता है, ऐसे अविनाभावी होता है। मुमुक्षु के नेत्र महात्मा को पहचान लेते हैं, इस तरह क्या महात्मा के नेत्र भी तुरंत ही मुमुक्षु को पहचान लेते हैं? वो तो पहचानेंगे पहचानेंगे, उनको तो निर्मलता ज्यादा है, वो तो ऊपर खड़े हैं, ऊपर वाले नीचे वाले को तो देख ही सकते हैं कि वो कितना ऊपर आया कितना बाकी है। जैसे हम ऊपर से देखें तो नीचे वाले को बराबर देख सकते हैं, ऊपर महात्मा के तो निर्मलता ज्यादा है, वो तो नीचे वाले को समझेंगे ही समझेंगे, उनके एक प्रश्न से समझ लेंगे कि वो कहाँ खड़ा है। सत्पुरुष के लिए अपनी भावना भक्ति कैसे बढ़ी, इसकी बात अन्य नए मुमुक्षु को बताने से उसको फायदा होता है, मगर मुझे ऐसा करने में कर्तृत्व व मान आने से बाद में डिस्टर्ब फील होता है, क्या करना चाहिए? विनम्रता से बताना, अहम भाव से अहंकार करके नहीं बताना, इस तरह से बताना। अन्य मुमुक्षु से बात न करें, या अन्य कोई उपाय है नहीं, बात करें लेकिन ढंग से बात करें, बात करने में मान चढ़ जाए उस प्रकार से बात नहीं करें, निवेदन करें। और बात करते मान चढ़े तो सच्ची भक्ति और भावना आई भी नहीं है। मुझे ऐसे भक्ति सत्पुरुष की आई, ऐसा कहने में मान चढ़ता है तो भक्ति भी कहाँ सच्ची है, उसमें तो गड़बड़ है, भक्ति का आडंबर हो गया, भक्ति नहीं है भक्ति का आडंबर हो गया। वो तो किसी मुमुक्षु के आपके प्रति भक्ति में साथ साथ प्रदर्शन या कृत्रिमता देखने पर दोष दृष्टि हो जाती है और उसके अन्य गुणों की प्रधानता नहीं रह पाती, क्या करें? दूसरे मुमुक्षु के प्रति देखना बंद करो, फिर भी दिखे जाए तो उसको गौण करो, इसके गुण को अल्प गुण को भी मुख्य करना और बड़े दोष को भी गौण करना, यही पद्धति है कार्य करने की। सही पद्धति यह है कि दूसरे के अल्प गुण को भी ज्यादा महत्ता देना और उसके बड़े दोष को भी गौण कर देना, क्योंकि हम तो गुण के ग्राहक है, गुण के ग्राहक होते हैं, गुण को ही लेते हैं, दोष के ग्राहक होते हैं वो दोष को लेते हैं। जिसको दोष देखने पर दोष दृष्टि हो जाती है वो तो दोष के ग्राहक हो गए, वो अपना काम नहीं है। विकल्प वाली दशा में ज्ञान व्याकार होता था और निर्विकल्प दशा में ज्ञेय का आकार ज्ञान में बंद हो जाता है, यह बात विस्तार से समझाइए। तो क्या है कि विकल्प वाली दशा में उपयोग अन्य ज्ञेय के प्रति लगा रहता था, जबकि निर्विकल्प दशा में उपयोग निर्विकल्प दशा में लगा रहता है। ज्ञान का स्वभाव दर्पणवत है, जिस ज्ञेय को वो अवलंबन करता है तदाकार हो जाता है। जैसे कड़वी दवा पिया तो जैसे मैं पूरा पूरा कड़वा हो गया, और मिठाई खाई तो मैं पूरा मीठा मीठा हो गया। जैसा अवलंबन करता है वैसा तदाकार रूप अपने को अनुभव करता है। वैसे अपना निर्विकल्प स्वरूप का अवलंबन लिया तो ज्ञान वैसा तदाकार हो गया। इस तरह से निर्विकल्प अनुभव बोला जाता है कि जैसा स्वरूप वैसे ही तदाकार ज्ञान का उपयोग हुआ। मुमुक्षु जीव को पदार्थ का निर्णय श्री गुरु से होता है। वो बात बराबर है कि पदार्थ का निर्णय बिना गुरु नहीं होता है। जीव करता है अपने आप, अपने ज्ञान लक्षण से करता है, लेकिन ये विधि बताने वाले श्री गुरु चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अंशतः अंतर्मुख होकर के पदार्थ की, अपने निज पदार्थ की पहचान होती है। पदार्थ मैंने निज स्वरूप, निज स्वरूप की पहचान अंतर तत्व होने से पहचान करने वाला ज्ञान भी कुछ अंश में अंतर्मुख होता है, तभी पहचान होता है। वो अंतर्मुख होने की विधि, जो अंतर्मुख हुए हैं वो ही बता सकते हैं, और बिना बताए वो बात समझ में आती नहीं, ज्ञान में आती नहीं। तो अंतर्मुख होने का जो प्रयोग है, वो प्रयोग वो करके दिखाते हैं, और देखने वाले को योग्यता में वो प्रयोग देखने की योग्यता संप्राप्त होती है, तब वो देख सकता है, तभी उसको दिखाया जाता है। इसलिए बिना सद्गुरु ये बीज ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। मुमुक्षु जीव को पदार्थ का निर्णय, मैंने स्वरूप की पहचान श्री गुरु से होती है, तो फिर अनुभव के समय किसी भी प्रकार का अवलंबन लेने का नहीं है, तो वहाँ अनंत उपकारी ऐसा श्री गुरु का अवलंबन छोड़ना पड़ता है, तो इसका क्या, यह समझाइए। देखिए, अनुभव के काल में स्वरूप का अवलंबन लिया, यही गुरु आज्ञा थी। श्री गुरु ने कौन सी आज्ञा दिया कि देख, मैं मेरा स्वरूप का अवलंबन लेता हूं, तुम भी अपना स्वरूप का अवलंबन लो, तुम मेरे सन्मुख देखोगे या मेरे गुण प्रशंसा करोगे, मेरी स्तुति करोगे, मेरी भक्ति करोगे, लेकिन मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं और अपेक्षा भी नहीं है कि तुम ऐसा करो। मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं और मेरी कोई अपेक्षा भी ऐसी नहीं है कि तुम ऐसा करो। मैं तो तब प्रसन्न होगा कि जब तुम ही तुम्हारा स्वरूप का अवलंबन लोगे तब मेरी प्रसन्नता तो इसमें है। तुम आत्मकल्याण के लिए मेरे पास आया हो और आत्मकल्याण करो तब तो मैं प्रसन्न होऊंगा, इसमें मेरा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन तुम भक्ति करोगे इसलिए मैं प्रसन्न होऊंगा, ये बात तो होगी खुशामतखोरी की। मैं कोई खुशामतखोर आदमी नहीं कि मेरी खुशामत करो तुम मैं मुझे अच्छा लग जाए, ये बात नहीं है। ये तो होता है संसार में, ये तो पारलौकिक बात है, अलौकिक बात है, लौकिक बात नहीं। इसलिए श्री गुरु का आलंबन छूटता है उसमें कोई दोष नहीं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। समोह शरण में जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि चलती है और कितने ही जीव देव मनुष्य तिरियन चाहते हैं सुनने को, तीन गति के जीव, कितने ही जीव निर्विकल्प दशा में स्वानुभूति को प्राप्त होते हैं। जब वो स्वानुभूति को प्राप्त होते उस वक्त वाणी का सुनना बंद हो जाता है, क्योंकि उपयोग एक काल में एक नहीं को जानता है। स्वरूप को जाने तब वाणी सुनने का नहीं होता है, वाणी सुने तब स्वरूप को जानने का उपयोग नहीं होता है। तो वाणी सुनना बंद कर दिया क्या, तो वाणी का अनादर हुआ कि नहीं? वाणी में यही हुक्म था, यही फरमान था कि निर्विकल्प हो जाओ, अपना स्वरूप का स्वानुभव करो। ये दिव्य ध्वनि का सार तो वो है। और भगवान ने फरमाया पर हम निर्विकल्प नहीं हुए, तो भगवान की वाणी तो सुनी लेकिन उसका फरमान को अंगीकार किया नहीं, स्वीकार नहीं किया, तो वाणी का अनादर किया। वाणी सुनते सुनते वाणी का अनादर किया तो वाणी में क्या सुना, तो कुछ नहीं किया, अनादर किया। पर जैसा सुना वैसा कार्य किया तो वाणी का आदर किया, वही वाणी का आदर है, वही खरा सुनना तो वही है। उसने खरी वाणी सुनी पर जिसने जैसा कहा वैसा किया नहीं तो उसने वाणी क्या सुना, सुना फिर भी नहीं अनसुना हो गया वो। तो ऐसे अवलंबन का विषय में कोई ये तर्क है वो बराबर नहीं है। प्रवचन में सुबह ऐसा लिया था कि बहुभाग अनुभव तो ध्यान में ही होता है, परंतु कभी चलते फिरते भी होता है, तो वो तो दोनों बात होती है। मनुष्य को ध्यान का प्रसंग है तो मनुष्य को ध्यान में अन्य प्रवृत्ति बंद हो जाती है, मन वचन काया की प्रवृत्ति को ध्यान में बंद करते हैं तो वहाँ एकाग्रता होने का अवसर अधिक है, इसलिए बहुभाग अनुभव को ध्यान में होता है। लेकिन जो स्वरूप की धुन में रहते हैं और धुन में चढ़ जाते हैं उनको तो कभी भी चलते चलते भी हो जाता है, क्योंकि वो तो बहुत सेकंड के कुछ कम भाग में होता है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है अनुभव होने में, लेकिन उसकी लगातार धुन रहनी चाहिए, पुरुषार्थ चलना चाहिए। अंतर्मुख का जो पुरुषार्थ है वो उग्रता पकड़ता है तब अनुभव होता है। अंतर्मुख का पुरुषार्थ जब उग्रता को पकड़ता है तभी अनुभव होता है। अवलंबन की उग्रता में स्वानुभव है और पुरुषार्थ की मंदता में शुभोपयोग होता है। बस ऐसी स्थिति है सर। चिड़ियंचने तो कभी भी होता, उनका तो ध्यान का अवसर नहीं है। मछली होती है कहाँ ध्यान करे, तो ध्यानस्थ अवस्था का शरीर ही नहीं है, मतलब तो त्रिज का तो शरीर ही आडा होता है, सर्प को भी होता है। क्रोध की प्रकृति लेकर के सर्प हुआ, भगवान के समोसरण में जाता है जो संगनी पंचेंद्रिय है, वो जो संगनी नहीं है उनकी बात नहीं है। भगवान के समोसरण में बड़े बड़े सर्प जाते हैं, बैठते हैं धर्म सभा में, कोई डरते नहीं। वैसे जो सर्प से खेलते हैं वो कहाँ डरते हैं, सबसे खेलने वाला सबसे थोड़े डरते हैं। भगवान के समोसरण में जाते हैं तो उनका तो शरीर ही आड़ा है, उनको ध्यान का क्या मौका है, त्रिज को तो मौका है। लेकिन ये बात मनुष्य के लिए है, जो सब शास्त्र में आई वो बात तो मनुष्य के लिए समझना कि बहुभाग जो है वो तो ध्यानस्थ अवस्था में ही अनुभव होता है, क्योंकि एकाग्रता का वहाँ विशेष प्रसंग है। और एकाग्रता टूटे ऐसी कोई प्रवृत्ति भी मनमचन काया की ध्यानस्थ अवस्था में नहीं रहती। इसलिए जो ज्ञानी हैं वो हमेशा ध्यान के प्रयोग भी करते हैं। त्रियंज अवस्था में त्रियंज को जो पांचवा गुण स्थान है वो तो जो स्थिति में उस स्थिति में एकाग्र हो गया वही उसका ध्यान। पर ध्यान होता है तब बाह्य प्रवृत्ति होती नहीं, जब ध्यान होता है ध्यान लगता है तो बाह्य प्रवृत्ति सहज उस वक्त बंद हो जाती है, बस उतनी सी बात है। पत्रांक 254 में कहे हुए पहले दो कारणों की क्षति रही न हो, फिर भी पदार्थ का निर्णय नहीं होने के कारण में योग्यता और अयोग्यता के जो प्रकार हैं उनका विस्तार से विस्तार करिए। जबकि ये प्रश्न सबको नहीं लागू होता है, जो पूर्णता के लक्ष्य करके अपने अपक्षपात रूप अवलोकन में आए हैं, बाद में सुख बुद्धि का अभिप्राय की अल्पता नहीं रही हो, उसके बाद भी पुरुष में परमेश्वर बुद्धि आई हो, बात की आखिरी स्टेज की बात है। आखिरी स्टेज में किसी को ऐसा होता है कि सत्पुरुष पर की जो परमेश्वर बुद्धि है उसमें बहुत लय रहती है, और इनके प्रति जो परिणाम लगे हुए हैं वो छूटते नहीं हैं, तो भी उसमें समय लगता है। किसी के अपने स्वरूप की जो खोज चलनी चाहिए, अपूर्व खोज, कैसे कि इस खोज के वसात निंद्रा भी छूट जाए और खाने पीने में कहीं किसी भी जगह रस नहीं आए, क्या खाया क्या नहीं खाया, बहुत चिंतित अवस्था में रह जाए, मेरा स्वरूप कैसा, इतनी अंतर खोज में खो जाए, खुद ही खो जाए, ऐसी तीव्रता नहीं आए तो भी समय लग जाता है, वो भी क्षति है। ऐसा नहीं होना वो भी क्षति है। और किसी को कुछ न कुछ परलक्ष रह जाता हो, कहीं न कहीं उदय में अधिकता आ जाती हो, उदय तो अनेक प्रकार का आता है, तीव्र मन कहीं न कहीं अधिकता आ जाती हो, तो समय और शक्ति का खर्च वहां होता रहता है। तो पदार्थ के निर्णय के पीछे भी प्रयास एकदम लगातार जरूरी है, लगातार रहना जरूरी है कि लगातार रहा कर, फिर भी नहीं हुए तो आकुलता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा बहुत प्रयत्न करते हैं होगा जब होगा, ऐसा नहीं है, उसकी भी चटपटी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्षति है। ऐसे ऊपर आने वाले को दूसरा कोई बड़ा दोष नहीं होता है, लेकिन ऐसे में ऐसी किसी न किसी प्रकार की क्षति होती है। फिर भी अनेक प्रकार की योग्यता होती है तो वो बात व्यक्तिगत हो जाती है। तो जिस प्रकार की वो व्यक्तिगत पर योग्यता होती है उनको परिचय से मालूम पड़ता है ज्ञानी को कि उनको ये गड़बड़ है थोड़ी, ये थोड़ी गड़बड़ अगर मिट जाए तो आगे चल सकता है, ऐसा उनको मालूम पड़ता है तो उनको बता देते हैं कि देखो इस बात को तुम छोड़ दो, इतने आगे आए हो तो फिर ऐसे ऐसा क्यों अपने को रोकने की क्या आवश्यकता है, छोड़ देंगे, छोड़ने में देर नहीं लगेगी, काम हो जाएगा। यथार्थपने पदार्थ का निर्णय हुआ है कि विकल्प में चढ़ा हुआ है, उसके लक्षण भिन्न भिन्न हो, भिन्न 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 करके बताइए। तो क्षेत्र से, काल से, भाव से, किसी भी पदार्थ का परिज्ञान द्रव क्षेत्र काल भाव से होता है, क्योंकि ये इसका विज्ञान है, साइंस है। तो आत्मा का भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव समझ लें, इसलिए कोई उसकी पहचान हो जाती है वो बात नहीं है। लेकिन पढ़ पढ़ करके कोई निश्चय कर लेता है या पढ़ करके रटन कर लेता है, रटते रटते हो जाए सो बात में नहीं है। तो ये गलत निश्चय हुआ है। वो खुद को पता इसलिए नहीं चलता है कि शास्त्र में जैसी बात लिखी है या ज्ञानी गुरु जो बात करते हैं वैसा ही उनकी समझ में तो वैसा ही है, कोई फेरफार वाला नहीं है, उल्टा तो नहीं है, फेरफार वाला भी नहीं है। तो सही समझ होने से उसको भ्रांति होती है कि मुझे भी आत्मस्वरूप का निश्चय वर्तता है, लेकिन वो निश्चय नहीं है, एक विकल्प मात्र है। इसका सबूत वो है कि निश्चय तो अंशतः अंतर्मुख होकर के होता है, और वो तो हुआ नहीं, वो तो मन के आधार से विचार करके 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 के उसने निर्णय कर लिया कि मेरा आत्मा ऐसा है, लेकिन अपना आत्मा का निश्चय नहीं है, नहीं हुआ है, थर्ड पर्सन का निश्चय हुआ है, और अंतर्मुख हुआ भी नहीं। तो जो अंशतः अंतर्मुख होकर के स्वरूप का अस्तित्व ग्रहण कर लेता है, निर्णय में क्या होता है, अस्तित्व ग्रहण होता है पर प्रतिभास होता है, तो स्वरूप तो साक्षात सिद्ध पद स्वरूप है। हमारी जो आत्मा है वो तो साक्षात परमात्मा सिद्ध पद स्वरूप है। उसको देखते ही उनका जो पुरुषार्थ है वो तो उछलने लगता है, और वो अंतर्मुखी पुरुषार्थ होता है, उसकी दिशा अंतर्मुख होती है। ऐसा तो उनको हुआ नहीं, होता नहीं है, विकल्प में जो निश्चय होता है उनको, तो उनको एक समस्या पैदा हो जाती है कि मैंने आत्मा को तो समझ लिया, निश्चय भी किया कि मेरी आत्मा ऐसी है, लेकिन मेरा पुरुषार्थ क्यों नहीं चलता है, और मैं अंतर्मुख क्यों नहीं हो सकता हूँ। ये जो अंतर्मुख होने की समस्या है, उस समस्या का समाधान उसको मिलता नहीं जिसको भ्रांतिगत निश्चय हुआ, कल्पित निश्चय हुआ, कल्पना में चढ़ करके उसको अंतर्मुख होने की समस्या का समाधान नहीं मिलता है। और जिसको सही निश्चय हुआ अंतर प्रयोग से और ज्ञानी गुरु के संयोग से, उसका प्रयोग देखा और अपना भी प्रयोग ऐसा ही किया, और जिसको अपना सिद्ध स्वरूप का भावभाषण हुआ, उसको तो पुरुषार्थ उछलेगा, सारे जगत की कीमत चली जाएगी। एक स्वरूप का ही इतना मूल्य है कि जगत का कोई पदार्थ का मूल्य उसको नहीं रहेगा, और इसका अंतर्मुख पुरुषार्थ चालू हो जाएगा। और वो पुरुषार्थ की गति बढ़ती जाएगी, तीव्रता बढ़ती जाएगी, तो उसको किसी से पूछना नहीं पड़ता कि मुझे निश्चय हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जिसको शंका हुई कि मुझे निर्णय हुआ कि नहीं हुआ, पहचान हुई कि नहीं हुई, उसको तो हुआ ही नहीं है। तो ये शंका होती है, यहाँ से भी पता चलता है। अंतर्मुख की दिशा का पता नहीं चला, वहां से भी पता चलता है। और आगे वो उलझन में आ जाएगा कि अरे मेरा पुरुषार्थ नहीं चलता, मेरा पुरुषार्थ उठता नहीं है, उठता नहीं है। लेकिन ये भाव भाषण वाला, स्वरूप की पहचान वाला ज्ञान ऐसा है कि ज्ञान के साथ साथ ही पुरुषार्थ उमड़ करके बाहर आता है, जोर से बाहर आता है, रह ही नहीं सकता, खुद ही नहीं रोक सकता। अनुकूल प्रतिकूलता तो रोक नहीं सकती, लेकिन खुद नहीं रोक सकता, ऐसा जोर से आता है। ये इसका सिम्टम है, पूरा प्रकरण लिखा है इस पर। तो इस तरह से वो समझ में आ जाता है कि निश्चय सही हुआ, पहचान सही हुआ या नहीं हुआ। एक दृष्टांत ले ले अपन। एक मनुष्य आजन्म दरिद्री है, उतना दरिद्री है, उतना दरिद्री है कि रोटी के एक टुकड़े टुकड़े के लिए उसको भीख मांगनी पड़ती है, कभी तो झूठा खाना पड़ता है, मिलता नहीं, बहुत चिंता करनी पड़ती है। ऐसे मनुष्य के घर में से निधान निकले, इतनी संपत्ति निकले कि 8-10 फीट डायामीटर का एक बड़ा चरु सोने का, कितना, किसका, सोने का, कि जिसका वजन ही 500 किलो हुए पर उसमें रत्न भरे हुए हैं, हीरे मोती नीलम पन्ना माणिक, कितने, पूरा का पूरा। उसने देख लिया कि मेरे घर में, देखा तो वैसे कि घर में तो रिपेयरिंग करने का तो पैसा था ही नहीं, बाप दादा का पुराना मकान था, खराब हो गया था, उसका फ्लोरिंग खराब हो गया था, वो तो निकलता रहता है, तो जो भी टाइल्स लगी हुई थी वो निकल गई। उसमें उसने देख लिया, कह रहे इधर तो कुछ बर्तन है, वो गाढ़ा हुआ था पूर्वजों ने, देखते ही इनकी दीनता रह गई या चली गई है,
चली गई।
पूरा चरु नहीं देखा है, जितनी लादी निकली, टाइल निकली, उतना ही भाग देखा, लेकिन उसका जो राउंड है उस पर से पता चलता कि ये तो पूरा कमरा जैसा ही है, छोटा बर्तन नहीं है ये, कलश तो उतना होता है उनका, तो बहुत बड़ा दिखता है, थोड़ा अंश में से पूरा का पूरा सरकमफेरेंस दिख जाता है। ऐसे ये आत्मा सुख के लिए बहुत दीनता करता है, सुख भोगने के लिए उतनी दीनता करता है, उतनी दीनता करता है कि परमाणु के पास भीख मांगता है और अनंत काल से भीख मांग रहा है। ऐसे आत्मा को साक्षात सिद्ध पद अनंत सुख का सागर उछलता हुआ दिखे। कैसा दिखे? अनंत सुख का सागर उछलता हुआ दिखे कि जिस सागर को नीचे तलवा नहीं है। ये हमारा जो सागर है ना, अपने जो विश्व में तो ये दो बड़ा सागर है, पैसिफिक ओशन है और अटलांटिक ओशन है, दो है जो अमेरिका के बगल में है, वो दोनों बड़ा सागर है। उनका बॉटम है ना तलवा, वो 5.5-6 माइल से ज़्यादा नीचे नहीं जाना पड़ता वर्टिकली, 5.5-6 माइल सीधे जाओ तो उसका तलवा का पता लग जाता है। लेकिन ये शांति का सुख का सागर को नीचे तलवा ही नहीं है, कितना भी जाओ ना ऐसा सागर दिखे। उसका पुरुषा परिणाम की गति उसके प्रति गए बिना कौन रोक सकता है? खुद ही नहीं रोक सकता है, परिणाम दौड़ लगाएगा। जहां सुख दिखे वहां परिणाम को जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। देखिए अभी पंचेंद्रिय के विषय में सुख का गलत निश्चय हो गया है तो उपयोग को रोक सकते हैं? कोई विचार करेंगे कि मुझे उपयोग नहीं दिमाग लगाना है, रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकेगा, लग जाएगा उपयोग, क्योंकि सुख का निश्चय कर रखा है। वो निश्चय कब टूटता है? कि भाव भाषण के काल में अपना सुख का सागर दिखता है और प्रत्यक्ष अंश से दिखता है, प्रत्यक्ष तौर से दिखता है, तब सारा निश्चय पलट जाता है कि ये मेरी कल्पना थी और जगह सुख की, मेरा सुख मेरे में बेहद भरा है और पुरुषार्थ के ज्ञान के सभी परिणाम इस सुख के सागर के प्रति दौड़ लगाते हैं। ऐसे स्वरूप का निश्चय होता है तो उसको अनुभव अल्पकाल में आए बिना रहता नहीं। जिसको स्वरूप की पहचान हुई इस सम्यक दर्शन का अंगभूत होने से उसको अल्पकाल में बहुभाग तो कुछ दिनों में ही सहानुभूति पैदा हो जाती है और उसको अनंत भव का नाश हो ही जाता है। तो ऐसा सहानुभव और ऐसा निश्चय करने का एक मौका है, उसको अपन सफल कर लें। बस इतनी सी बात, टाइम हुआ है।